ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
नमस्कार, प्रस्तुत करने जा रहा हूं कवि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल भाग एक। प्रतिष्ठान के खंडर में और गंगा तट की सिक्ता भूमि में अनेक शिविर और फूस के झोपड़े खड़े हैं। माघ की अमावस्या की गोघुली में प्रयाग में बाघ पर प्रभात का सा जनरव और कोलाहल तथा धर्म लूटने की धूम कम हो गई है, परंतु बहुत से घायल और कुचले हुए अर्धमृतकों की आर्त ध्वनि उस पावन प्रदेश को ना आशीर्वाद दे रही है। स्वयं सेवक उन्हें सहायता पहुंचाने में व्यस्त है। यूं तो प्रतिवर्ष यहां पर जनसमूह एकत्र होता है, पर अब की बार कुछ विशेष पर्व की घोषणा की गई थी, इसलिए भीड़ अधिकता से हुई। कितनों के हाथ टूटे, कितनों का सिर फूटा और कितने ही पसलियों की हड्डियां गवाकर अधोमुख होकर त्रिवेणी को प्रणाम करने लगे। एक नीरव अवसाद संध्या में गंगा के दोनों तट पर खड़े झोपड़ों पर अपनी कालीमा बिखेर रहा था। नंगी पीठ, घोड़ों पर नंगे साधु के चढ़ने का जो उत्साह था, जो तलवार की फिकेती दिखलाने की स्पर्धा थी, दर्शक जनता पर बालू वर्षा करने का जो उन्माद था, बड़े बड़े कारचोबी झंडों को आगे से चलने का जो आतंक था, वो सब अब फीका हो चला था। एक छायादार डोंगी जमुना के प्रशांत वृक्ष को आकुलित करती हुई गंगा की प्रखर धारा को काटने लगी, उस पर चढ़ने लगी। मांझियों ने कसकर डांडे लगाए, नाव झूसी के तट पर जा लगी। एक संप्रभात सज्जन और युवती के साथ एक नौकर उस पर से उतरे। पुरुष यौवन में होने पर भी कुछ खिन सा था, युवती हसमुख थी, परंतु नौकर बड़ा ही गंभीर था। ये संभवतः उस पुरुष की प्रभावशालिनी शिष्टा की शिक्षा थी। उसके हाथ में एक बांस की डोलची भी थी, जिसमें कुछ फल और मिठाइयां भी थे। साधुओं के शिविरों की पंक्ति सामने ही थी, वो लोग उसी ओर चले। सामने से दो मनुष्य बात करते आ रहे थे कि ऐसी भव्य मूर्ति इस मेले में ना दूसरी नहीं देखी, जैसे साक्षात भगवान का अंश हो। अजीब ब्रह्मचार्य का तेज है, अवश्य महात्मा है। और ये सब कहते हुए वो दोनों चले गए। ये दल भी उसी शिविर की ओर चल पड़ा जिधर से दोनों बातें करते आ रहे थे। पट मंडप के समीप पहुंचने पर देखा बहुत से दर्शक खड़े हैं। एक विशिष्ट आसन पर एक 20 वर्ष का युवक हल्के रंग का काशाय वस्त्र अंग पर डाले बैठा है। जटा जुटा तो नहीं थी, पर कंधे तक बाल बिखरे हुए थे। आंखें स्वयं के मद में भरी हुई थी। पुष्ट भुजाएं और तेजोमय मुखमंडल की आकृति बड़ी प्रभावशाली लग रही थी। सचमुच वो युवक तपस्वी भक्ति करने योग्य था। आगंतुक और उसकी युवती स्त्री ने विनम्र होकर नमस्कार किया और नौकर के हाथ से लेकर उपहार सामने रखा। महात्मा ने स्नेह मुस्कुरा दिया। वे सामने बैठे हुए भक्त लोग कथा कहने वाले एक साधु की बात सुन रहे थे। वो एक पद की व्याख्या कर रहा था। तासो चुप है रहिए, गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बतावेगा। नमक की पुतली जब लवण सिंधु में गिर गई, फिर वो अलग होकर क्या अपनी सत्ता बतावेगी। ब्रह्मा के लिए भी वैसे कहना असंभव है, इसलिए महात्मा ने कहा है तासो चुप है रहिए। उपस्थित साधु और भक्तों ने एक दूसरे का मुंह देखते हुए प्रसन्नता प्रकट की। सहसा महात्मा ने कहा, उपनिषदों में भी कहा गया है अवचैनन प्रोवाच। भक्त मंडली ने इस विविधता पर आश्चर्य प्रकट किया और धन्य धन्य के शब्द से पट मंडप गूंज उठा। संप्रभात पुरुष सुशिक्षित था, उसके हृदय में ये बात समा गई कि महात्मा वास्तविक ज्ञान संपन्न पुरुष है। उसने अपने साधु दर्शन की इच्छा की सराहना की और भक्ति पूर्वक बैठकर सत्संग सुनने लगा। रात हो गई, जगह जगह पर अलाव धधक रहे थे, शीत की प्रबलता थी, फिर भी धर्म संग्राम के सेनापति लोग शिविरों में डटे रहे। कुछ देर ठहर कर आगंतुक ने जाने की आज्ञा चाही। महात्मा ने पूछा, आप लोगों का शुभ नाम और परिचय क्या है? हम लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम श्री चंद्र है और मेरी धर्म पत्नी है, कहकर श्री चंद्र ने युवती की और संकेत किया। महात्मा ने भी उसकी ओर देखा। युवती ने उस दृष्टि से ये अर्थ निकाला कि महात्मा जी मेरा भी नाम पूछ रहे हैं। वो जैसे किसी पुरस्कार पाने की प्रत्याशा और लालच से प्रेरित होकर बोल उठी, दासी का नाम किशोरी है। महात्मा की दृष्टि में जैसे एक आलोक घूम गया। उसने सिर नीचा कर लिया और बोला, अच्छा विलंब होगा, जाइए भगवान का स्मरण रखिए। श्री चंद किशोरी के साथ उठे, प्रणाम किया और चल दिए। साधुओं का भजन कोलाहल शांत हो गया था। निस्तब्धता रजनी के मधुर करुण में जाग रही थी। निशीत के नक्षत्र गंगा के मुकुर में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। शीत पवन का झोंका सबको अकिंगन करता हुआ विरक्त के समान भाग रहा था। महात्मा के हृदय में हलचल थी। वो निष्पाप हृदय ब्रह्मचार्य से मालिन शिविर छोड़कर कंबल डाले बहुत दूर गंगा की जलधारा के समीप खड़ा होकर अपने चिरसंचित पुण्यों को पुकारने लगा। वो अपने विराग को उत्तेजित करता, परंतु मन की दुर्बलता प्रलोभन बनकर विराग की प्रतिद्वंदिता करने लगती है, और इसमें उसके अतीत की स्मृति भी उसे धोखा दे रही थी। जिन जिन सुखों को वह त्यागने के लिए चिंता करता था, वो ही उसे धक्का देने का उद्योग करते थे। दूर सामने देखने वाली कलिंदजा की गीत का अनुकरण करने के लिए वो मन को उत्साह दिलाता, परंतु गंभीर अर्ध निशिष्ट के पूर्ण उज्जवल नक्षत्र बाल्यकाल की स्मृति के सदृश मानस पटल पर चमक उठते थे। अनंत आकाश में जैसे अतीत की घटनाएं रजताक्षरों से लिखी हुई उसे दिखाई पड़ने लगी। झेलम के किनारे एक बालिका और एक बालक अपने प्रणय के पौधे को अनेक क्रीड़ा कौतूहलों के जल से सींच रहे हैं। बालिका के हृदय में असीम अभिलाषा और बालक के हृदय में अदम्य उत्साह देखने को मिला। बालक रंजन 8 वर्ष का हो गया है और किशोरी 7 की। एक दिन अचानक रंजन को लेकर उसके माता पिता हरिद्वार चल पड़े। उस समय किशोरी ने उससे पूछा, रंजन कब आओगे? उसने कहा, बहुत ही जल्द आऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी गुड़िया ले आऊंगा। रंजन चला गया। जिस महात्मा की कृपा और आशीर्वाद से उसने जन्म लिया था, उसी के चरणों में चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसकी माता ने संतान होने के लिए ऐसी मनोती की थी। निष्ठुर माता पिता ने अन्य संतानों के जीवित रहने की आशा से अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा का शिष्य बना दिया। बिना उसकी इच्छा के वो संसार से, जिससे उसने अभी देखा भी ना था, अलग कर दिया गया। उसका गुरुद्वारे का नाम देव निरंजन हुआ। ये सचमुच आदर्श ब्रह्मचारी बना। वृद्ध गुरुदेव ने उसकी योग्यता देखकर उसे 19 वर्ष की अवस्था में गद्दी का अधिकारी बनाया। वो अपने संघ का संचालन अच्छे ढंग से करने लगा। हरिद्वार में उस नवीन तपस्वी की सुख्याति पर बूढ़े बूढ़े बाबा लोग ईर्ष्या करने लगे, और इधर निरंजन के मठ की भेंट पूजा बढ़ गई। परंतु निरंजन सब चढ़े हुए धन का सदुपयोग करता था। उसके सदनुष्ठान का गौरव चित्र आज उसकी आंखों के सामने खिंच गया, और वो प्रशंसा और सुख्याति के लोभ दिखाकर मन को इन नई कल्पनाओं से हटाने लगा। परंतु किशोरी के नाम ने उसे 12 वर्ष की प्रतिमा का स्मरण दिला दिया। उसने हरिद्वार आते हुए कहा था, किशोरी तेरे लिए गुड़िया ले आऊंगा। क्या ये वही किशोरी है? अच्छा यदि है तो इसे संसार में खेलने के लिए गुड़िया मिल गई, उसका पति है, ये उसे बहलाएगा। मुझ तपस्वी को इससे क्या, जीवन का बुल्ला विलीन हो जाएगा। ऐसी कितनी ही किशोरियां अनंत समुद्र में तिरोहित हो जाएंगी, मैं क्यों चिंता करूं। परंतु प्रतिज्ञा, ओह वह स्वप्न था, खिलवाड़ था। मैं कौन हूं किसी को देने वाला, वही अंतर्यामी सबको देता है। मूर्ख निरंजन संभल, कहां मोह के थपेड़े में झूमना चाहता है। परंतु यदि ये कल फिर आई तो भागना होगा, भाग निरंजन। इस माया से हारने के पहले युद्ध होने का अवसर ही मत दे। निरंजन धीरे धीरे अपने शिविर को बहुत दूर छोड़ता हुआ स्टेशन की ओर विचरता हुआ चल पड़ा। भीड़ के कारण बहुत सी गाड़ियां बिना समय भी आ जा रही थी। निरंजन ने एक कूली से पूछा, ये गाड़ियां कहां जाएंगी। उसने कहा, सहारनपुर। देव निरंजन गाड़ी में चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन जब श्रीचंद्र और किशोरी साधु दर्शन के लिए फिर उसी स्थान पर पहुंचे, तब वहां अखाड़े के साधुओं को बड़ा व्यर्ग पाया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि महात्मा जी समाधि के लिए हरिद्वार चले गए। यहां उनकी उपासना में कुछ विघ्न होता था। वे बड़े त्यागी हैं, उन्हें गृहस्थों का बहुत झंझट पसंद नहीं। यही धन और पुत्र मांगने वालों तथा कष्ट से छुटकारा पाने वालों की प्रार्थना से वे ऊब चुके हैं। किशोरी ने कुछ तीखे स्वर में अपने पति से कहा, मैं पहले ही कहती थी कि तुम कुछ ना कर सकोगे, ना तो स्वयं कहा और ना मुझे प्रार्थना करने दी। विरक्त होकर श्रीचंद ने कहा, तो तुमको किसने रोका था, तुम्ही ने क्यों ना संतान के लिए प्रार्थना की, कुछ मैंने बाधा तो नहीं दी थी। उत्तेजित किशोरी ने कहा, अच्छा तो हरिद्वार चलना होगा, चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा और अमृतसर आज तार दे दूंगा कि मैं हरिद्वार होता हुआ आता हूं, क्योंकि मैं व्यवसाय इतने दिनों तक यूं ही नहीं छोड़ सकता। अच्छी बात है, परंतु मैं हरिद्वार अवश्य जाऊंगी, सो तो मैं जानता हूं, कहकर श्रीचंद्र ने मुंह भारी कर लिया। परंतु किशोरी को अपनी टेक रखनी थी, उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि उन महात्मा से मुझे अवश्य संतान मिलेगी। उसी दिन श्रीचंद्र ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया और अखाड़े के भंडारी ने भी जमात लेकर हरिद्वार जाने का प्रबंध किया। हरिद्वार के समीप ही जाह्नवी के तट पर तपोवन का स्मरणीय दृश्य है। छोटी छोटी कुटीरों की श्रेणी बहुत दूर तक चली गई है। खर स्तोत्रों जाह्नवी की शीतल धारा उस पावन प्रदेश को अपने कल नाद से गुंजरित करती है। तपस्वी अपनी योगचर्या साधन के लिए उन छोटी छोटी कुटीरों में रहते हैं। बड़े बड़े मठों से अनसत्र का प्रबंध है, वे अपनी भिक्षा ले आते हैं और इसी निर्मित स्थान पर बैठकर अपने पाप का प्रशालन करते हुए ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। सुंदर शीला खंड रमणीय लता वितान विशाल वृक्षों की मधुर छाया अनेक प्रकार के पक्षियों का कोमल कलर वहां एक अद्भुत शांति का सृजन करता है और आरण्यक गंगा की धारा जहां घूम गई है वो छोटा सा कोना अपने सब साथियों को छोड़कर आगे निकल गया है। वहां एक सुंदर कुटी है जो नीची पहाड़ी की पीठ पर जैसे आसन जमाए बैठी है। उसी की दालान में निर्जन गंगा की धार की ओर मुंह किए ध्यान में निमन है। यहां रहते हुए कई दिन बीत गए। आसन और दृढ़ धारणा से अपने मन को स्वयं में ले आने का प्रयत्न लगातार करते हुए भी शांति नहीं लौटती। विक्षेप बराबर होता था। जब ध्यान करने का समय होता है, एक बालिका की मूर्ति सामने आ खड़ी होती है। वो उसे माया आवरण कहकर तिरस्कार करता है, परंतु वो छाया जैसे ठोस हो जाती है। सूर्य उदय की रक्त किरणें आंखों में घुसने लगती हैं। घबराकर तपस्वी ने ध्यान छोड़ दिया। देखा कि पगडंडी से एक रमणी उस कुटीर के पास आ रही है। तपस्वी को क्रोध आया। उसने समझा कि देवताओं को तप में प्रतुर डालने का कोई अभ्यास होता है। क्या वे मनुष्यों के सम्मान ही द्वेष आदि दुर्बलताओं से पीड़ित है। रमणी चुपचाप समीप चली आई, साष्टांग प्रणाम किया। तपस्वी चुप था, वो क्रोध से भरा हुआ था, परंतु ना जाने क्यों उसे तिरस्कार करने का साहस ना हुआ। उसने कहा, उठो, तुम यहां क्यों आई हो? किशोरी ने कहा, महाराज, अपना स्वार्थ ले आया, मैंने आज तक संतान का मुंह नहीं देखा। निरंजन ने गंभीर स्वर में पूछा, अभी तो तुम्हारी अवस्था 18-19 से अधिक नहीं है, फिर इतनी दुश्चिंता क्यों? किशोरी के मुख पर लज्जा की लाली थी, वो अपनी वयस की ताप तोल से संकुचित हो रही थी, परंतु तपस्वी का विचलित हृदय इसे व्रीड़ा समझने लगा। वो जैसे लड़खड़ाने लगा, सहसा सहमत कर बोला, अच्छा, तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया, जाओ मेरे मठ में आना, अभी 2 दिन ठहर कर, ये एकांत योगियों की स्थली है, यहां से चली जाओ। तपस्वी अपने भीतर किसी से लड़ रहा था। किशोरी ने अपनी स्वाभाविक तृष्णा भरी आंखों से एक बार उस सूखे यौवन का तीव्र आलोक देखा, वो बराबर देख ना सकी, छलछलाई, आंखें नीची हो गई। उन्मत्त के समान निरंजन ने कहा, बस जाओ। किशोरी लौटी अपने नौकर के साथ, जो थोड़ी ही दूर पर खड़ा था, और हर की पेड़ी की ओर चल पड़ी। चिंता और अभिलाषा से उसका हृदय नीचे ऊपर हो रहा था। रात एक पहर हो गई थी। हर की पेड़ी के पास एक ही घर की खुली खिड़की के पास किशोरी बैठी थी। श्री चंद्र को यहां आते ही तार मिला कि तुम तुरंत चले आओ, व्यवसाय वाणिज्य के काम अटपट होते हैं। वो चला गया। किशोरी नौकर के साथ रह गई। नौकर विश्वासी और पुराना था। श्री चंद्र की लाडली स्त्री किशोरी मनस्विनी थी। ठंड का झोंका खिड़की से आ रहा था, परंतु अब किशोरी के मन में बड़ी उलझन थी। कभी ये सोचती कि मैं क्यों यहां रह गई, क्यों ना उन्हीं के संग चली गई। फिर मन में आता, रुपए पैसे तो बहुत हैं, जब उन्हें भोगने वाला ही कोई नहीं होगा, फिर उसके लिए उद्योग ना करना भी मूर्खता है। ज्योतिषी ने भी कह दिया था कि संतान बड़े उद्योग से होगी, फिर मैंने क्या बुरा किया। अब शीत की प्रबलता हो चली थी। उसने चाहा खिड़की का पल्ला बंद कर ले। सहसा किसी के रोने की ध्वनि सुनाई दी। किशोरी को उत्कंठा हुई, परंतु क्या करे, बलदाऊ बाजार गया था। चुप रही। थोड़े ही समय में बलदाऊ जाता दिखाई पड़ा। आते ही उसने कहा, बहुरानी, कोई गरीब स्त्री रो रही है, यही नीचे पड़ी है। किशोरी भी दुखी थी। संवेदना से प्रेरित होकर उसने कहा कि उसे लिवाते क्यों नहीं आए, कुछ उसे दे दिया जाता। बलदाऊ सुनते ही फिर से नीचे उतर गया, उसे बुला लिया। वो एक युवती विधवा थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके मलिन वस्त्र का अंचल तर हो गया था। किशोरी के आश्वासन देने पर ये संभली, और बहुत पूछने पर उसने अपनी कथा सुना दी। विधवा का नाम रमा था। बरेली की एक ब्राह्मण वधु है। दुराचार का लांछन लगाकर उसके देवर ने उसे यहां लाकर छोड़ दिया। उसके पति के नाम कुछ भूमि थी, उस पर अधिकार जमाने के लिए उसने कुचक्र रचा है। किशोरी ने उसके एक एक अक्षर का विश्वास कर लिया, क्योंकि वो देखती है कि परदेश में उसके पति ने उसे छोड़ दिया और स्वयं चला गया। उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं यहां अभी कुछ दिन रहूंगी, मुझे एक ब्राह्मणी चाहिए, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बहन के समान रखूंगी। रमा कुछ प्रसन्न हुई, उसे आश्रय मिल गया। किशोरी शैया पर लेटते लेटते सोचने लगी कि पुरुष ना बड़े ही निर्मोही होते हैं। देखो, वाणिज्य और व्यवसाय का इतना लोभ है कि मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, जब तक वो स्वयं नहीं आएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरा भी नाम किशोरी है। यही चिंता करते करते किशोरी सो गई। 2 दिन तक तपस्वी ने मन पर अधिकार जमाने की चेष्टा की, परंतु वो असफल रहा। विविधता कि जितने तर्क जगत में मिथ्या प्रमाणित करने के लिए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। वे सब समझते थे कि जगत तो मिथ्या है, इसके जितने भी कर्म हैं वो सब माया है। प्रमता जीव भी प्रकृति है, क्योंकि वो भी अपरा प्रकृति है। जब वृक्ष मात्र प्रकृत है, तब इसमें आलौकिक अध्यात्म कहाँ? यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है, तो वो मुझे खेलना चाहिए। वास्तव में गृहस्थ ना होकर भी मैं वही सब तो करता हूँ जो एक संसारी करता है। वही आय व्यय का निरीक्षण और उसका उपयुक्त व्यवहार। फिर ये समाज उपलब्ध सुख क्यों छोड़ दिए गए? त्यागपूर्ण थोती दार्शनिकता जब किसी ज्ञान भास को स्वीकार कर लेती है तब उसका धक्का संभलना मनुष्य का काम नहीं। उसने फिर सोचा, मठधारियों साधुओं के सब पंथ खुले होते हैं। यद्यपि प्राचीन आर्यों को धर्म नीति में इसलिए कुटीचर और एकांत वासियों का ही अनुमोदन किया है, परंतु संघबद्ध होकर बौद्ध धर्म ने ये जो अपना कूड़ा छोड़ दिया है उसे भारत के धार्मिक संप्रदाय अभी भी फेंक नहीं सकते। तो फिर चले संसार अपनी गति से। और फिर देव निरंजन अपने विशाल मठ में लौट आया और महंती नए ढंग से देखी जाने लगी। भक्तों की पूजा और चढ़ाव का प्रबंध होने लगा। गद्दी और तकिये की देखभाल चली। दो ही दिन में मठ का पूरा रूप बदल गया। एक चांदनी रात थी, गंगा के तट पर अखाड़े से मिला हुआ उपवन था। विशाल वृक्ष की विरल छाया में चांदनी उपवन की भूमि पर अनेक चित्र बना रही थी। वसंत समीर ने कुछ रंग बदला था। निरंजन मन के उद्वेग से ही वह टहल रहा था। किशोरी आई, निरंजन चौक उठा, हृदय में रक्त दौड़ने लगा। किशोरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे ऊपर दया न होगी? निरंजन ने कहा, किशोरी क्या तुम मुझे पहचानती हो? किशोरी ने उस धुंधले प्रकाश में पहचानने की चेष्टा की, परंतु वो असफल होकर चुप रही। निरंजन ने फिर कहना प्रारंभ किया, झेलम के तट पर रंजन और किशोरी नाम के दो बालक और बालिका खेलते थे। उनमें बड़ा स्नेह था। रंजन जब अपने पिता के साथ हरिद्वार जाने लगा तब उसने कहा था कि किशोरी तेरे लिए मैं गुड़िया ले आऊंगा, परंतु वो झूठा बालक अपनी बाल संगनी के पास फिर न लौटा। उसका बाल सहचर इतना बड़ा महात्मा, किशोरी की समस्त ध्वनियों में हलचल मच गई। ये प्रसन्नता से बोल उठी, और तुम वही रंजन हो? लड़खड़ाते हुए निरंजन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ किशोरी मैं वही रंजन हूँ। तुमको पाने के लिए ही जैसे आज तक तपस्या करता रहा, ये संचित तप तुम्हारे चरणों में निछावर है। संतान ऐश्वर्य और उन्नति देने की मुझ में जो कुछ शक्ति है वो सब तुम्हारी है। अतीत की स्मृति की वर्तमान कामनाएं किशोरी को बुलवा देने लगी। माथे से पसीना बहने लगा। दुर्बल हृदय किशोरी को चक्कर आने लगा। उसने ब्रह्मचारी के छोड़े वक्ष पर अपना सिर टेक दिया। कई महीने बीत गए। बलदाऊ ने स्वामी को पत्र लिखा कि आप यहाँ आइए, बिना आपके आए बहुरानी नहीं जाती, और मैं अब यहाँ एक भी घड़ी रहना अच्छा नहीं समझता। श्री चंद्र आए। हठीली किशोरी ने बड़ा रूप दिखलाया, फिर मान मनाव हुआ। देव निरंजन को समझा बुझाकर किशोरी ने फिर आने की प्रतिज्ञा करके पति के साथ चली गई। किशोरी का मनोरथ पूर्ण हुआ। रामा वहां रह गई। हरिद्वार जैसे पुण्य तीर्थ में क्या विधवा को स्थान और आश्रय की कमी थी। 15 बरस बाद काशी में ग्रहण था। रात में घंटों पर नहाने का बड़ा सुंदर प्रबंध था। चंद्र ग्रहण हो गया था। घाट पर बड़ी भीड़ थी। आकाश में एक गहरी नीलिमा फैली। नक्षत्रों में चौंगनी चमक थी, परंतु खगोल में कुछ प्रसन्नता ना थी। देखते देखते एक अच्छे चित्र के समान पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश पट पर खो दिया गया। धार्मिक जनता में कोलाहल मच गया। लोग नहाने गिरने तथा भूलने भी लगे। कितनों का साथ छूट गया। विधवा रमा अब सदवा हो गई थी। अपनी कन्या तारा के साथ वो भंडारी जी के साथ आई थी। भीड़ के एक ही धक्के में तारा अपनी माता तथा साथियों से अलग हो गई। यूथ से बिछड़ी हुई हिरनी के समान बड़ी बड़ी आंखों से वो इधर उधर देख रही थी। कलेजा धक धक कर रहा था। आंखें छलछला रही थी और उसकी पुकार विलीन हुई जाती थी। तारा अधीर हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक अधेड़ स्त्री पास खड़ी हुई तारा को ध्यान से देख रही थी। उसने पास आकर पूछा, बेटी तुम किसको खोज रही हो? तारा का गला रुध गया, वो उत्तर ना दे सकी। तारा सुंदरी थी, होनहार सौंदर्य उसके प्रत्येक अंग में छिपा था। वो जवान हो चली थी, परंतु कुसुम के रूप में पंखुड़ियां विकसित होनी अभी बाकी थी। अधेड़ स्त्री ने स्नेह से उसे छाती से लगा लिया और कहा, मैं अभी तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वो तो मेरी बहन जैसी है, मैं तुझे भली भांति जानती हूँ, तू घबरा मत। हिंदू स्कूल का एक स्वयं सेवक पास आ गया। उसने पूछा, क्या तुम भूल गई हो? तारा रो रही थी। अधेड़ स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ, यही इसकी माँ है, वो भी इसे खोजती थी, मैं लिवा जाती हूँ। स्वयं सेवक मंगल देव चुप रहा। युवक छात्र एक युवती बालिका के लिए हट ना कर सका, वो दूसरी ओर चला गया और तारा उसी स्त्री के साथ चली।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।